सभी बाबा की याद का गीत सुन रहे थे। बाबा का प्यार कितना गहरा है, नाप है उसकी क्या? सागर से तुलना करते हैं हम सभी बाबा के प्यार में समाने वाली आत्माएं, लौ में लीन होने वाले बच्चे उसका अनुभव करते हैं कि बाबा का प्यार कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंचा है। हम सभी बाबा के प्यार में ही अपने आप को समर्पित करते हैं। प्यार ने अपना बनाया या ज्ञान ने अपना बनाया? ज्ञान से नहीं है? ज्ञान एक फाउंडेशन है हमारा। अगर ज्ञान का फाउंडेशन पक्का है तो इमारत मजबूत रहती है। प्यार में कभी कभी क्या होता है, माया भी अपना बनाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी जरूरी है। प्यार में तो हम सभी बाबा के बच्चे बने। कई लोग तो बाबा के घर में भोग खा करके बाबा के बच्चे बन गए। गुरुवार के दिन बाबा के घर में आते हैं मुरली सुनने और भोग खा करके जाते हैं। बहनों के प्यार ने, बाबा के प्यार ने, प्यार की पालना ने अपना बना दिया। अभी बाबा कहता है प्यार के साथ साथ ज्ञान से अपना फाउंडेशन मजबूत करो, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, और जिसके पास ज्ञान है, समझ है, वो यथार्थ रीति से बाबा को पहचान करके बाबा की आज्ञाओं पर, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। और श्रीमत पर चलने से ही हमारी दिन प्रतिदिन प्रगति होती है। इसलिए आज बाबा ने बहुत अच्छी तकदीर की रेखा खींचने की कलम हम सबको दी कि श्रीमत में कभी भी परमत मन मत मिक्स नहीं करना, नहीं तो तकदीर क्या होगा, लकीर लग जाएगी। तकदीर की रेखा श्रेष्ठ नहीं बन सकेगी। तो बाबा की श्रीमत हम सबको बाबा की मुरलियों से मिलती है। रोज नई नई श्रीमत हम सभी बाबा की मुरली से सुनते हैं, और उस श्रीमत प्रमाण जो बच्चे चल रहे हैं कदम कदम पर, क्यों क्या कैसे नहीं करते, उनकी अच्छे से अच्छी ऊंची तकदीर बन रही है, बनती जा रही है। तो हम सभी बाबा के घर में आए हैं अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए। तकदीर जगा करके भी आए हैं और तकदीर बना भी रहे हैं। तकदीर जगी है तब तो हम बाबा के बने। जिनकी सोई हुई है वो तो बनते ही नहीं है, चाहे जितना आप कहो उनको। तो हम सबकी तकदीर जग गई जो बाबा हमको मिल गया, और अब बाबा हमको कहता है कि बच्चे और ऊंचे से ऊंची तकदीर तुम्हारी बनती जाए। 21 जन्मों की तकदीर, 84 जन्मों की तकदीर बनाने का ये संगम का श्रेष्ठ समय है। जैसे फसल का बीज बोने का समय होता है, अब जब बीज बोया गया, आपको मालूम है ना, अभी हमारे शांति वन में खेती है बाजू में तपोवन, उस तपोवन में समय पर बीज बोया गया खरबूजे का, और अभी बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। कल शायद आप सबको बाबा के खेती का खरबूजा मिलेगा, बहुत अच्छा खरबूजा आया है। तो समय पर बीज बोया तब तो आया, अगर समय पर बोया नहीं होता, उसकी ठीक संभाल नहीं की गई होती तो फल भी नहीं मिलता। तो बाबा भी कहता है कि सारे कल्प के लिए बीज बोने का श्रेष्ठ समय संगम युग है। तो आपके पास बीज है? सबके पास है बीज? बीज बोना आता है? आता है कि नहीं? कौन सा बीज है आपके पास? अच्छे कर्मों का। और हर आत्मा में अपनी कोई न कोई विशेषता है, विशेषता ही बीज है। है विशेषता कि नहीं है? कुमारियों में विशेषता है, जानती है अपनी विशेषताओं को? जानती हो? हर एक जानता है अपनी विशेषताओं को, जो न जानता वहां तो उठाओ। नहीं? अच्छा, एक उठा रहे, ठीक है, अच्छी बात है। आपको भी नहीं मालूम अपनी विशेषता? अच्छा, और मालूम है अपनी विशेषताएं? नहीं मालूम हो तो बताऊं? इतने बड़े बड़े विद्वान, पंडित, पढ़े लिखे, जो भगवान को नहीं पहचान सकते, उस भगवान को पहचानने की विशेषता किसमें है? है, ये तो सबसे बड़ी विशेषता है। भाग्य विधाता को जिसने पहचान लिया, जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ी विशेषता तो आप बच्चों की है, जो इतने गुप्त रूप में आए हुए भगवान को, ज्योतिर्बिंदु बाप को तुमने पहचाना और पहचान करके बाबा कहा और अपने जीवन बाबा के आगे समर्पित कर दी, तो इससे बड़ी विशेषता और क्या होगी? तो हम सभी ने दिल से मेरा बाबा कहा, ये सबसे बड़ी विशेषता है। उसको पहचान लिया, जान लिया, उसके बन गए, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। इसलिए जिसका भाग्य विधाता स्वयं भगवान है, बाप है, उसका भाग्य कितना ऊंचा होगा। तो एक विशेषता नहीं आप में, बहुत सी विशेषताएं हैं। हिम्मत की विशेषता है, दृढ़ता की विशेषता है, निश्चय की विशेषता है, बाबा को अपना बनाने की विशेषता है, सच्चाई की विशेषता है। है कि नहीं? सच्चे दिल पर साहेब राजी, भगवान को राजी किया अपनी सच्चाई के आधार से। आज बाबा की मुरली में वरदान था कि विश्वास की नाव सत्यता है, था ना? विश्वास की नाव सत्यता है। और जो विश्वास पात्र बच्चे हैं, जो दिल और दिमाग से सच्चे हैं, आनेष्ट हैं, उनको सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अगर आनेष्टी की एक विशेषता है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा मैं आपकी हूँ, अंदर और बाहर साफ हूँ, अंदर एक और बाहर दूसरा, उसको सच्चाई नहीं कहा जाता। दिखावे में कोई बड़ा योगी दिखावे और अंदर से कालापन हो, अंदर से कुछ और चल रहा हो, तो उसको आनेष्ट अथवा सच्चा नहीं कहा जाता। सच्चा किसको कहा जाता है? आनेष्ट है ये, बहुत ईमानदार है। अपने यज्ञ के अंदर मैं दादा थे ना, विश्वरतन दादा, सबने देखा है, पालना ली है कईयों ने। तो बाबा कहते थे बहुत आनेष्ट बच्चा है मेरा। बाबा दादा की विशेषताओं को हमेशा वर्णन करते थे कि बहुत आनेष्टी से यज्ञ की एक एक पाई की, एक एक चीज की बहुत आनेष्टी से संभाल की, इसलिए विश्वास पात्र बन गया। यज्ञ का ईमानदार बच्चा है तो यज्ञ सब कुछ उसको दे देता है, सब अधिकार सौंप देता है। आज हमारा यज्ञ जो चल रहा है वो किस आधार पर चल रहा है? केवल विश्वास के आधार पर। बड़ों ने हम बच्चों पर, हम सब पर विश्वास रखा कि बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। बहुत अच्छा विश्वास रख करके समर्पित दे दिया सब कुछ, और हम सभी उसको बहुत आनेष्टी से, ईमानदारी से संभाल रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो विश्वास उनका बैठता गया और हमारे आनेष्टी का संस्कार, आनेष्टी की विशेषता बढ़ती गई। ईमानदारी की विशेषता से हम अधिकारी यज्ञ के बन गए। एक एक चीज पर, यज्ञ की हर चीज पर हमारा अधिकार जम गया। बाबा के हर विशेषता पर, हर गुण पर, बाबा की हर प्रॉपर्टी पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार कैसे मिला? आनेष्टी से। आनेष्टी से जब बाबा का विश्वास बैठ गया कि बहुत अच्छा बच्चा है, आनेष्ट बच्चा है, ईमानदार है। जैसे घर में कोई ईमानदार बच्चे होते हैं तो उनके आगे ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ बाप उनको कोई चीज उनसे छिपा के नहीं रखते हैं। और कोई अगर छिपाने वाला है, चोरी करने वाला है, हेरा फेरी करने वाला है, इधर की चीज उधर कर दे, घर की चीज को इधर उधर बांट दे, तो फिर वो सोचते हैं अभी इसे छिपाओ, नहीं तो ये सब उड़ा देगा, बांट देगा, तो ताला चाबी रखते हैं। नहीं तो बहुत विश्वास पात्र है, कहीं एक पैसे भी इधर उधर नहीं करेगा। तो बाबा के जितने खजाने हैं उन खजानों को बढ़ाना, उन खजानों में कभी अपनी मन मत और पर मत ऐड न करना, ये विश्वास पात्र के अनिष्ट आत्मा की सबसे पहली निशानी है। क्योंकि अगर हम बाबा के अनिष्ट बच्चे हैं तो पहली अनिष्टि अपने आप से चाहिए। पहली अनिष्टि अपने आप से क्या है? ईमानदारी। क्या है? अपने से ईमानदारी। क्या मैं अपने आप से ईमानदार हूं अथवा अंदर और बाहर समान, कथनी और करनी समान है, जो कहता हूं वो खुद करता हूं। अगर कहता कुछ है और करता कुछ है तो उसको ईमानदार नहीं कहेंगे। तो स्वयं के प्रति ईमानदारी ये है कि मैं स्वयं जो हूं, जैसा हूं, उस स्थिति से उस समान में स्थित रहूं। और बाबा कहता सच्चा ईमानदार, सच्चा बच्चा मेरा वो है जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना जानता है। अगर बार बार देहाभिमान में आ जाता है वो ईमानदार नहीं है, बॉडी कॉन्शियस है। और देहाभिमान के कारण उसे कई गलतियां होती हैं, इंद्रियों के वशीभूत होता है, कभी मुख से उल्टे वचन निकल जाते हैं, कभी दृष्टि से गलत चीजें देख लेता है, कभी कानों से बुरे बातें सुन लेता है, तो वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार वो है जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी कथनी और करनी समान है, जो कुछ कहता कुछ है और करता कुछ है, वो ईमानदार नहीं है, अपने आप से भी ईमानदार नहीं है। समान में रहना, अभिमान में ना आना, श्रीमत पर चलना, परमत के प्रभाव में ना आना, मनमत के प्रभाव में ना आना, स्वचिंतन करना, परचिंतन से दूर रहना, ईमानदारी के लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। ईमानदार कौन है? यज्ञ के अंदर ईमानदार किसको कहा जाए, अनिष्ट किसको कहा जाए? जिस पर बाबा को विश्वास बैठ जाए, दादियों का विश्वास बैठ जाए कि बच्चा मेरा ईमानदार है, वो कहें कि ईमानदार है, इसको जो देंगे संभालेगा, गंवाएगा नहीं, ये यज्ञ में जहां भी रहेगा वहां यज्ञ की प्रतिष्ठा करेगा, यज्ञ को आगे बढ़ाएगा, यज्ञ के अंदर कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जो यज्ञ की बदनामी हो जाए, यज्ञ पिता की बदनामी हो जाए। अगर कोई यज्ञ की और यज्ञ पिता की बदनामी करता है, यदि वो यज्ञ की कोई भी चीज को इधर उधर व्यर्थ गंवाता है, नष्ट करता है, तो वो यज्ञ का ईमानदार वफादार बच्चा नहीं है। वफादार ईमानदार नहीं है तो विश्वास पात्र नहीं, और विश्वास पात्र नहीं है तो अधिकार उसको प्राप्त नहीं हो सकते। अगर हम सब अधिकार बाबा के यज्ञ में लेना चाहते हैं, अधिकार का इच्छा रहती है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, अगर अधिकार चाहिए तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का बैलेंस चाहिए। कर्तव्य न कर रहा हो और अधिकार मांगता हो, हम कुछ करें नहीं और अधिकार मांगे, तो मांगने से कितना मिलेगा? इसलिए बाबा कहता कर्तव्य करके अधिकार ले लो, श्रीमत पर चल करके अनिष्ट बन करके रहो तो विश्वास बैठ जाए और सब अधिकार मिल जाए। इसलिए स्वयं के प्रति अनिष्टि क्या है, सोचना, विचार करना कि मैं अपने अगर सत्य स्वरूप में स्थित रहता हूं, मैं अगर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता हूं, आत्मा सत्य है, सत्य के दो अर्थ बताते हैं ना सबको, क्या कौन से दो अर्थ? सत्य माना सच्चा, सच्चाई, जिसके लिए बाबा कहता है सच तो बिठो नच, सच्चा है तो नाचो, डांस करो, सच्चा है तो भगवान उस पर प्रसन्न है, राजी है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो एक सच्चाई का अर्थ है सच, ट्रुथ, और दूसरा सच माना अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा के दोनों विशेषताएं, हम सभी आत्माओं की दोनों विशेषताएं, सत्य भी हैं, अविनाशी भी हैं, मरती कटती जलती नहीं। और सत्य स्वरूप में अगर हम स्थित रहते हैं तो जो बोलेंगे, जो देखेंगे, जो करेंगे वो सब सत्य को देखेंगे, असत्य को नहीं। असत्य क्या है? शरीर विनाशी है ना, असत्य है। इसको देखते हुए बाबा कहता नहीं देखो, देहभान में नहीं आओ। अगर मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहती हूँ, अगर मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती हूँ, अगर मैं आत्मा अपने समान में स्थित रहती हूँ, माना मैं अपने आप से अनिष्ट हूँ, ईमानदार हूँ, और दूसरों से अनिष्ट, परिवार में भी तो अनिष्ट ही है ना, जो विश्वास बैठ जाए परिवार, ये बाबा का बच्चा बड़ा अनिष्ट है, ये भाई बड़ा अनिष्ट है, ये बहन बहुत ईमानदार है, कब बैठेगा विश्वास? जब इतनी उसकी वृत्तियां शुभ होंगी, कल्याण की होंगी, जो किसी के प्रति भी अकल्याण के वृत्ति ही न हो, कभी सोचे भी नहीं किसका बुरा हो जाए। अनिष्ट वो है जो सबके प्रति शुभ चिंतन की वृत्ति में रहता है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सबकी प्रगति हो, कोई बढ़ रहा है उसको पीछे खींच ले, वो अनिष्ट नहीं माना जाएगा। कोई किसी की विशेषताओं को देख करके जेलसी करता हो तो उसको अनिष्ट नहीं कहा जाएगा। अगर कोई को कोई चीज प्राप्त हो रही हो और हम उससे जल रहे हो, खुशी हमारी गायब हो रही हो, तो उसको अनिष्ट नहीं कहा जाएगा। अनिष्ट बाबा के परिवार में अनिष्ट वो है जो परिवार की खुशी में अपनी खुशी का अनुभव करता है, जो परिवार को आगे बढ़ता हुआ देख करके अपने आप को खुश नसीब अनुभव करता है, इसका नाम हुआ बाबा का नाम हुआ। ये आगे बढ़ा, बाबा का यज्ञ आगे बढ़ा। आज हमारी दादियों ने जैसे यज्ञ को बढ़ाया, दादी जी ने किया, किस तरह से यज्ञ को बढ़ाया, कोई छोटे से कार्य को किया हम लोगों ने, छोटे से छोटा कार्य, प्रशंसा की, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं करता, ऐसे करके हम लोगों को आगे बढ़ाया ना। इससे यज्ञ को हम लोग संभालने के लिए निमित्त बन गए। विशेषताएं देख देख करके, विशेषताओं का वर्णन करके, महिमा करके, प्रशंसा करके, एक एक बच्चे को योग्य बना दिया, विश्वास रखा, ऐसे नहीं इसको देंगे तो खत्म कर देगा, इसको देंगे तो उड़ा देगा, विश्वास रखा और विश्वास के आधार से हम सबको योग्य बनाया। इसलिए आज यज्ञ के अंदर जो निमित्त आत्माएं हैं वो कैसे यज्ञ को संभाल रही हैं, गंवा नहीं रही हैं। तो बाबा के यज्ञ को अगर हम सभी इतना विश्वास पात्र बन करके, सबके प्रसुभ चिंतक बन करके रहते हैं, तो परिवार की भावनाएं हम सबके प्रति बहुत अच्छी हो जाती, सबका स्नेह हमें मिलने लगता है। अगर सबका स्नेह परिवार में प्राप्त करना है तो सबसे अच्छी विधि है अनिष्ट होकर के रहो, ईमानदार होकर के रहो, सबके प्रति शुभ चिंतन करो, और यज्ञ पिता के प्रति ईमानदारी यही है कि जो कुछ मुझे मिला है उनको मैं बांटूं और बढ़ाऊं। बाबा ने हमको संभालने के लिए नहीं दिया है, तिजोरी में रख दो, बैंक में रख दो, जैसे लौकिक बाप अगर दे और कहे तिजोरी में रख दो, उससे खुशी क्या होगी? तो बाबा ने भी अपने बच्चों को कोई ऐसी चीजें नहीं दी हैं जो हम छिपा करके रखें, कहा बच्चे तुमको जो कुछ मिला है बांटो बढ़ाओ। तो अनिष्टि तब मानी जाएगी जब हम बाबा के हर खजाने को, जो खजाने दिए हैं ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, जो संपत्ति हमें बाबा की अविनाशी मिली है, उसका मनन करना, चिंतन करना, उसका स्वरूप बनना और उसको और बढ़ा करके दूसरों को देना, अनुभव के आधार से दूसरों को बताना, तो बाबा कहेगा ये अनिष्ट बच्चे ने प्रगति की है, उसको बढ़ाया है, उसको घटाया नहीं है, गंवाया नहीं है। तो हम सब बाबा के अनिष्ट बच्चे कहाँ तक बने चेक करो। बाबा हम बच्चों पर विश्वास रखे और अपने सब अधिकार की चाबियां दे दे, तुम बच्चे बालक सो मालिक हो, बालक सब है लेकिन मालिक सब नहीं है, हैं? बालक सब बन गए, बच्चे सब हैं, लेकिन मालिक वही बनते हैं जो अनिष्ट रहते हैं, जो सच्चे रहते हैं, और सच्चे हैं तो सबका विश्वास उसके ऊपर बैठ जाता है। तो आज बाबा की मुरली के वरदान से आप सभी ने विचार किया होगा, सोचा होगा कि मैं बाबा का बच्चा कितना अनिष्ट रहता हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार की मन मत पर मत पैर न हो। और जो विशेषता है अनेस्टी की, एक अलग विशेषता है हरेक की, उसके आधार से वो यज्ञ में सुपात्र है। वो अनेस्टी की एक विशेषता, लेकिन कईयों में बहुत अच्छी दृढ़ता की विशेषता है। जो संकल्प करेंगे मर मिटेंगे, लेकिन करना ही है। दुनिया के अंदर वो विकार का रूप जिद का था, और बाबा कहता जो सच्चा है अनेस्ट है वो कभी भी जिद नहीं करता, सिद्ध नहीं करता, अपनी सत्यता को सिद्ध नहीं करता। ऐसे नहीं मैं तो बड़ा सच्चा हूं, मैं जो कहता हूं मैं सच कहता हूं, और अगर कोई गलत बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो बाबा क्या कहता है, अनेस्ट है? अगर कोई झूठ बोले और मैं गुस्सा करूं तो क्या होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। उसने झूठ बोल करके पाप कर लिया और मैंने गुस्सा करके पाप कर लिया। तो किसी के झूठ पर मैं गुस्सा करूं या मैं सत्य हूं इसलिए मैं जिद करूं उसको सिद्ध करने के लिए, तो बाबा कहता है वो सत्यता सत्यता की लिस्ट में नहीं आती है, वो अनेस्टी नहीं है। जहां सत्यता है वहां सभ्यता जरूर होगी। उसके बोलने में, देखने में, चलने में बहुत रॉयल्टी दिखाई देगी, तो सत्य है, उसको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, बहुत रॉयल है। तो बाबा ने हम सबको सत्य स्वरूप में इसीलिए स्थित किया है, इसलिए बाबा कहता सबसे बड़ा आत्मा का गुण, सबसे बड़ा गुण है सत्यता का, सच बोलना, सच होकर के रहना, सच्चाई निर्भय बना देती है, निर्वैर बना देती है। जो सच्चा है वही किसी की आंच उस पर आ नहीं सकती, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, मिट्टी धूल सूरज कहीं भी वो छिप नहीं सकता, उसका सूरज अपने आप चमकता है। तो इसलिए बाबा ने हम सबको सच्चा बनाया है, अनेस्ट बनाया है, और अनेस्टी के आधार से हम पर विश्वास रखा। तो हम सभी बाबा के योगी बच्चे, पवित्र बच्चे, अगर हमारी मन वचन कर्म की पवित्रता है तो पवित्रता सबसे बड़ी अनेस्टी है। अगर आत्मा कोई भी अपवित्र विचार करती है, व्यर्थ संकल्पों में रमण करती है, घूमती रहती है, नेगेटिव सोचती है, दैहिक भान में रहती है, देह के बारे में बार बार उसके ख्याल चलते हैं, विकारी भावनाएं बनी हुई रहती हैं, वो न अपने से अनेस्ट है, न बाबा से अनेस्ट है, न बाबा की शिक्षाओं से अनेस्ट है। बाबा इतना पढ़ा रहा है और फिर भी मैं आत्मा अगर उसके विपरीत कोई कर्म कर रही हूँ, कोई संकल्प कर रही हूँ, कोई बोल कर रही हूँ और उन्हीं में उलझी हुई हूँ, तो मैं बाबा की अनेस्ट बच्ची नहीं हूँ। अनेस्ट वो है जो बाबा के एक एक महावाक्य को, जो कुछ बाबा कहे वो करे। बाप कहे और बच्चा करे तो कह गए तो बड़ा अनेस्ट है, बड़ा ईमानदार है। तो बाबा ने जो कुछ मुझे कहा है अगर मैं आत्मा उसको उसी तरह से कर रही हूँ, और जो हूँ जैसी हूँ बाबा के आगे स्पष्ट हूँ, बाबा मुझे जानता है, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बाबा से कुछ छिपाता नहीं हूँ। अगर कोई छिपा रहा है, बाबा अपना भेद बताए और बच्चा अपने आप को छिपा ले, बताए नहीं, कहे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, अंदर युद्ध चल रही है और ऊपर ऊपर से कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, अपने अंदर का भेद नहीं देते, बाबा को बताते नहीं है, अपना सच्चा चार्ट नहीं देते, तो बाबा क्या कहेगा, ये बच्चा अंदर एक है बाहर दूसरा है, ये अनेस्ट नहीं है। बाबा भी कहता मैं ऐसे बच्चों को देखते भी नहीं देखता हूं, ऊपर ऊपर से प्यार करता हूं, सच्चे दिल का प्यार नहीं देता हूं। और जब भगवान का प्यार अगर सच्चे दिल का मुझे नहीं प्राप्त हो रहा तो योग लगेगा? तो योग का आधार क्या है, सच्चाई ना। सहज योगी जीवन सच्चे की सहज बन जाती है, मेहनत और मुश्किल से आत्मा मुक्त हो जाती है। तो हम अपने आप को अंदर और बाहर देखें कि मैं जैसा बाहर हूं ऐसा ही अंदर हूं, और जैसा अंदर हूं वही बाहर हूं, या अंदर तो बहुत युद्ध है, अंदर तो बहुत विकार भरे हुए हैं, अंदर तो बहुत बुराइयां हैं, और ऊपर ऊपर से दिखाता हूं मैं तो बड़ा योगी हूं, मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, लोग मुझे बहुत अच्छा माने, बहुत अच्छा कहें, कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, कभी दूसरा प्रशंसा कर दे तो फूल गए, खुश हो गए, बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत, हमारे जैसा कोई नहीं। लेकिन अंदर अंदर विकारों से युद्ध चल रही है, अंदर टाइम वेस्ट हो रहा है, अंदर से हम समझ रहे हैं कि हमारी ये स्थिति है, तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप से पूछो, दूसरा आपको क्या बताएगा, तुम अपने आप से पूछो मैं ईमानदार हूँ, आनेस्ट हूँ, सच्चा हूँ बाबा के साथ, जो हूँ बाबा आपका हूँ, और अगर मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी कोई संस्कार है तो मैं बाबा को सुना करके बाबा से शक्ति लेता हूँ। इधर उधर सुना देना भी आनेस्टी नहीं है, जैसे कोई इधर की बात उधर कर दे उसको आनेस्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आनेस्ट उसको कहा जाएगा जो घर की बात अंदर रखे, बाहर न फैलाए। अगर कोई बच्चा अपने घर की परिवार की बात बाहर सुना करके आ जाए तो उसे छिपाएंगे लोग, कहेंगे नहीं ये आनेस्ट नहीं है, ये बात को बाहर घुमा देगा, फैला देगा। तो घर की बात, अपने आप की बात, अपने जीवन की बात या अपने परिवार की बात कहीं पर भी बाहर न बना फैला करके समा लेना, ये सच्ची अनिष्टि है, परिवार के प्रति अनिष्टि है। तो बाबा के यज्ञ की बातें, घर की बातें, परिवार की बातें अगर कोई नेगेटिव मुझे दिखाई भी दी, सुनाई भी दी, समझ में भी आया गलत है, तो उस गलती को समा करके उस जगह पर शुभ भावना और शुभ कामना की संकल्प फेंकना, अपनी सकाश देना, ये अनिष्टि है। तो अगर इस पर आप चिंतन करेंगे ना, इस विषय को देखेंगे, तो अनिष्ट आत्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस परिवार के अंदर शोभा है, और बहुत गिनी चुनी आत्माएं अनिष्ट हैं, सब नहीं है। जिस पर भगवान को विश्वास बैठ जाए, निमित्त आत्माओं को विश्वास बैठ जाए, वो चैलेंज से कहे नहीं मुझे विश्वास है ये सच्चा है, हम ऐसे अपने जीवन को बनाएं, हम कभी विश्वासघात नहीं करें, बड़े विश्वास रखें और हम कुछ उल्टा कर्म कर रहे हो, उन्होंने हमारे पर इतनी ऊंची भावनाएं रखी और हमारी वृत्तियां गलत गंदी हो, तो हम अनिष्ट बच्चे बाबा के नहीं कहला सकते, हमारा योग नहीं लग सकता, मन और बुद्धि भागती रहेगी, भटकती रहेगी। हम आज एक बात कर रहे थे, हमने कहा संस्कार कहते हैं बदलते हैं, तो किसने कहा संस्कार बदलते नहीं है, बहुत मुश्किल है संस्कारों को बदलना, लेकिन संस्कारों को बदलने की जो विधियां बाबा ने सुनाई हैं, उन विधियों पर ध्यान नहीं है तो संस्कार बदलेंगे कैसे? अगर हमारी विधियां ठीक हो तो सिद्धि तो हुई पड़ी है, संस्कार अवश्य बदलेंगे, लेकिन उसकी विधि क्या है? पावरफुल योग, और योग लग नहीं रहा तो संस्कार कैसे बदलेंगे? योग न लगने के कारण है, हम अपने आप से, बाबा से, ज्ञान से, परिवार से अनिष्ट नहीं है। अगर हम इस बात पर विचार करें कि हम बच्चे सच्चे होकर के रहें, जो हूं जैसा हूं बाबा मैं आपका हूं, बाबा को सच्चे दिल से अपना समाचार सुनाएं और बाबा से शक्ति लें, एक बाबा दूसरा न कोई, किसी आत्मा से शक्ति लेने का संकल्प ना है कि आत्मा मुझे मदद कर देगी, ये मुझे साथ देगी, ये मुझे सहारा देगी, बाबा कहता आत्माओं में फंस गए तो परमात्मा दूर हो जाएगा। इसलिए हम सबका संबंध एक बाबा से सच्चे दिल का हो, सच्चे दिल से बाबा को अपनी बात दो, बाबा को सुनाओ और बाबा से शक्ति लो, कनेक्शन जोड़ो, और अगर नहीं जुड़ रहा है तो उसके कनेक्शन जोड़ने की विधि को ठीक करो। कनेक्शन जोड़ने की विधि तो आती है ना, आती है भाई लोग, आती है कि नहीं? बहुत सहज बताते हैं, हम तो दूसरों को सबको सुनाते हैं ना, ज्ञानियों को भी, कनेक्शन जोड़ने की विधि क्या है? बोलो कुमारिया, बोलो, कनेक्शन जोड़ने की विधि बताओ। आत्मिक स्वरूप में देह रूपी रबड़ को उतारना पड़ेगा ना, बाबा को तो रबड़ है नहीं, वो तो विदेही है, वो तो निराकार है। हम सबको जो ये बॉडी का रबड़ चढ़ा हुआ ना, देह का, देह अभिमान का, बाबा कहता है इससे पहले न्यारे हो जाओ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अशरीरी बनो पहले, विदेही बनो, फिर विदेही बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, रोज लाइन आती है। ऐसे ही बाबा बाबा कहेंगे कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, करंट नहीं आएगी, शक्तियां नहीं आएंगी। तो बाबा से अगर हमें शक्ति लेनी है तो अनिष्टि के साथ साथ अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। जब भी समय मिले ना, इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके इस देह से अलग हो जाओ, अपने ज्योति स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा हूं, मैं इससे अलग हूं। आप देखेंगे इस देह से डिटैच होते ही आपका कनेक्शन बाबा से लग जाएगा, जुट जाएगा, शक्ति आने लगेगी। और बाबा की शक्ति जिस आत्मा के पास आ जाए उसकी कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाएंगे, उसके संस्कार अपने आप परिवर्तित होने लगेंगे। सर्वशक्तिमान बाबा अगर कंबाइन हो गया तो जितनी कमजोरियां होंगी वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कंबाइन करने का, कनेक्शन जोड़ने का यथार्थ तरीका आना चाहिए। और यथार्थ तरीका अगर किसी के पास हो और फिर कहे मैं कमजोर हूं, तरीका यथार्थ हो कमजोर हो ही नहीं सकता। तो हम बच्चों को बाबा ने तरीका सिखाया है, विधियां बताई हैं, इसलिए विधि पूर्वक बाबा को याद करो और विधि पूर्वक कनेक्शन जोड़ करके उससे शक्ति लो तो सब कमजोरियां सब संस्कार अपने आप बदल जाए। तो हम बाबा के आनेस्ट बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं और विश्वास पात्र होकर के रहें। तो आज की मुरली का यही सार है कि उसमें मन मत मिक्स नहीं करना, परमत मिक्स नहीं करना, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो श्रीमत प्रमाण हमारा हर कर्म हो, समान में रह करके हम सबको सम्मान दें, उल्टा अभिमान ना आ जाए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। अभिमान आ गया समान खत्म हो गया, ये आनेस्टी नहीं है। तो बाबा ने हम सबको वरदानों पर चिंतन अगर करो ना ऐसे, तो आपको बहुत बड़ा खजाना बाबा की मुरली से रोज मिलता है, बहुत खजाना है। और उस खजाने को जिसने अपना बना लिया, मनन करके, चिंतन करके, वर्णन करके, उसका अपना हो जाएगा और उस खुशी में रहेगा। तो खुशी में रहना ही योग का पहला आधार है। योग नहीं लगता है, योग में मेहनत है, उसका कारण है हम आत्मा आंतरिक प्रसन्नता में नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न चित्त रहो अपने आप योग लग जाए, खुश रहो और खुशी बांटो, सेवा में मन को बिजी रखो, मन को भटकाओ नहीं, इधर उधर नहीं करो। अगर ये दो बातों का हमारा ध्यान है कि मन हमारा बाबा की सेवा में बिजी है और मन में सदा खुशी उमंग उत्साह के विचार चलते हैं और हर आत्मा को मैं खुश करता हूँ, तो खुशी देना और खुश रहना, सेवा में मन को व्यस्त रखना, ये योग का बहुत सहज तरीका, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन गलत है तो योग लगाने में मेहनत लगती है, कहते क्या करूं योग ही नहीं लगता है, मजा ही नहीं आता योग में, बैठते हैं नींद आ जाती है, बैठते हैं बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो मेहनत वाला योग है क्या? सहज योग को मेहनत वाला क्यों बनाते हो? सहज योग है, राजयोग, सहज योग। तो इसलिए सहज योग करने के लिए सहज विधियों को अपनाओ और विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। ओम शांति।